Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Yada panchavatishthante jnanani manasa sah buddhischa na विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम् ताम योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम् अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्येव। हमारे जीवन में जितनी भी अनुभूतियां हैं वो आकार की अनुभूतियां हैं। हमारी इंद्रियां आकार को जानती हैं। आकार माने सीमा, किसी भी वस्तु की सीमा उसका आकार होती है और वो वस्तु आकार के बाहर नहीं होती है। हम किसी वस्तु का आकार देख रहे हैं माने उसकी सीमा देख रहे हैं। जैसे आपने देखा भारत का नक्शा, वो उसका आकार है और जहां आकार है वो वस्तु आकार के बाहर नहीं होती है। भारत की सीमा है, सीमा के बाहर भारत नहीं है, उसका अस्तित्व नहीं है। और हमारे इंद्रियों का एक स्वभाव है वो सीमित वस्तुओं को ही ग्रहण करती हैं। असीमित और निर्गुण विषयों को ग्रहण करने का सामर्थ्य हमारे इंद्रियों में नहीं है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और उससे बनी हुई सारी पंचभूतात्मक पंचीकृत ये दुनिया है। ये दुनिया गुणवान है और एक आकार में आबद्ध है। इसी को वेदांत के शब्दों में कहा परिचिन्न है। ये दुनिया के सारे पदार्थ परिचिन्न है, गुणवान है, अवगुण है और ये गुणों की परिभाषा भी हमारी अपनी है। जो गुण अच्छा लगा वो गुण है और जो अच्छा नहीं लगा वो अवगुण है। आपको ज्यादा ठंड लगने लगी तो अवगुण हो गया और जब गर्मी लगने लगी तो ठंडी वो गुण हो गया। बहुत ठंड है तो गर्मी लग रही भैया, तो आप थोड़ी बोलेंगे जब आपको ठंडी लग रही है और उस समय आपके बगल में हीटर को ला के रख दे बहुत ठंड है तो आपको बहुत अच्छा लगे, ओहो ये गुण है। यही तो गुणमयता है। ये गुणमयता हमारे मन का धर्म है। हमारे मन को अनुकूल लगे तो वो गुण है। और भयंकर गर्मी और उस समय आपके बगल में कोई हीटर जला दे, आप बोलेंगे ये क्या कर रहे हैं, ये तो बहुत बुरा हो, बहुत बुरा है, ये अवगुण है, क्योंकि मन को प्रतिकूल। तो अनुकूलता और प्रतिकूलता, गुण और अवगुण, ये हमारे मन के भाव है और हम तय कर लेते हैं। हमारा ही मन तय कर लेता है कि ये अच्छा है और हमारा ही मन तय कर लेता है कि ये बुरा है। और उन सारी वस्तुओं को फिर उसी रूप में भाव के साथ ग्रहण करते हैं। इंद्रियां बाह्य पदार्थों को भाव के साथ ग्रहण करती हैं। हम किसी भी चीज को आग्रह, दुराग्रह, कामना, विकार, जलन, घृणा, द्वेष के बिना नहीं देख सकते। जो हमारे भाव में है वो हम देख लेते हैं, जो हमारे इच्छा में है वो देख लेते हैं, किसी भी बाहर के व्यक्ति को हम देख लेते हैं तो वहां केवल हमारी आंख नहीं देखती है, उस आंख के साथ हमारी भावना भी जुड़ जाती है और वो भावना भी आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। वो बाहर के पदार्थों के आकलन में कारण बन जाती है। कल हमारे प्रिय यजमान मैरागड़ा जी आए थे और वो मधु बाबू जी की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे और हमको भी लगा कि यार सचमुच मधु बाबू जी बड़े साधु पुरुष हैं, शांत भाव से कथा में आते हैं और कथा में आके शांत भाव से चले जाते हैं। आपको कभी बहुत ज्यादा बोलते हुए देखते हैं? नहीं, नहीं। और बहुत तितिक्षु, धर्मनिष्ठ, अंदर से वैराग्य संपन्न साधु महात्माओं के प्रति आस्था, श्रद्धा, विनम्रता, सेवा भाव लिए। तो आपके प्रति जो भाव बनता है ना, वो आंख से देख के, कान से सुन के, बाहर वस्तुएं होती हैं तो हमारी आंख देख लेती हैं, और जब भाव बनता है ना तो फिर देखने में भी वो भाव आ जाता है। तो हमारी इंद्रियां ही तो जान लेती हैं ना, हमारी इंद्रियां बाहर के पदार्थों को जान लेती हैं, गुण जान लेती हैं, अवगुण जान लेती हैं, और वो दोनों भी हमारे मन को प्रभावित करती हैं। बाहर जब गुण मालूम पड़ता है तो गुण ग्रहण करने लगती है और वो प्रेरणा भी लेती हैं कि हमें वैसा बनना है, हमें वैसा बनना है। और जब दोष देख लेते हैं तो अपने को बचने की प्रेरणा मिलती है, नहीं यहां से बचना चाहिए। तो हमारी इंद्रियों का एक सामर्थ्य है, जानने का एक सामर्थ्य है, और उस सामर्थ्य के अनुसार दुनिया के पदार्थों को जान लेती हैं। लेकिन जो निराकार हैं, जो निर्गुण हैं, परम पूज्य महाराज श्री ने कहा कि पहले गुणों से अवगुणों को पार कर ले, वैराग्य से आसक्ति को पार कर लेना चाहिए, धर्ममय जीवन से अधर्म से ऊपर उठना चाहिए, योग के द्वारा विक्षिप्त जीवन को पार कर ले। मन में बहुत चंचलता है, अब क्या करना चाहिए? तो बोले योग करो, अभ्यास करो, मन में एकाग्रता लाने का अभ्यास करो, और वो एकाग्रता आपके मन की सारी विक्षेप अवस्था को दूर कर देता है। और उसके बाद फिर तो बोले दोनों से परे हो जाए, धर्ममय जीवन से अधर्म को मिटाए, और उसके बाद फिर धर्म भी छूट जाए और वो आत्म तत्व की स्थिति में हम प्रवेश कर जाए। हमारे जीवन में एक ऐसा समय आना चाहिए कि अब हमारे जीवन में न प्रवृत्ति है और न
निवृत्ति,
मन प्रवृत्ति और निवृत्ति से परे हो जाए, क्योंकि आत्म तत्व प्रवृत्ति और निवृत्ति से परे हैं, न वो प्रवृत्ति है और न वो निवृत्ति है, न वो धर्म है और न वो अधर्म है, न वो चंचलता है और न वो एकाग्रता है, न वो ज्ञान है और न वो अज्ञान है, वो दोनों से परे हैं। ये ज्ञान भी मन का धर्म है और अज्ञान भी मन का धर्म है, प्रवृत्ति भी मन का धर्म है और निवृत्ति भी मन का धर्म है। आग्रह तो होना चाहिए भैया हमारा जीवन धर्ममय हो, और धर्ममय जीवन बना के अधर्म को मिटा दिया, और उसके बाद फिर वो धर्म भी छूट जाए और धर्म और अधर्म से परे, धर्मात अन्यत्र, अधर्मात अन्यत्र, अन्यत्र अस्मात् कृता कृतात्। अन्यत्र भूताच भव्याच यत पश्यसि तद्वद सर्वधर्मान् परित्यज्य। अब एक समय ऐसा आए कि अपने अंदर ही वो परम धर्म प्रकट हो, हमें कुछ करने की जरूरत न रहे, करने और नहीं करने से ऊपर हो जाए। सत्य तो यही है, सत्य तो यही है। धीरे 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 अच्छे करने से बुरे करने पर नियंत्रण पा लें और फिर अच्छे बुरे कर्मों से ऊपर हो जाए, नैष्कर्म अवस्था को प्राप्त कर लें। और वो जो नैष्कर्म आत्म तत्व हैं वो केवल समझ की चीज है, वो करने की चीज नहीं, केवल समझ की चीज है। वहां समझना है। और ये जो समझ है ना, ज्ञान एक क्रांति है। इसलिए शास्त्रों ने कहा कि केवल जानना है, वहां कुछ करना नहीं है। आपको करने की जरूरत नहीं, करना तो सारा संसार है। ये करना धरना जो है ना, ये सब संसार में होता है। जो वेदांत है यहां केवल समझना है। और समझ एक क्रांति है, ज्ञान एक जीवन की क्रांति है। ज्ञान एक बहुत बड़ा बदलाव है, बदलाव। आपने जाना, जानने के साथ होना शुरू हो जाता है। ये हमारे जीवन का बहुत रहस्यपूर्ण सूत्र है। जानते ही हम होना शुरू हो जाते हैं। आपको मालूम पड़ा, आपको मालूम पड़ा कि भैया मेरे पैर के नीचे सांप पड़ा है, सांप। आपको मालूम ही होना चाहिए और कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है। केवल मालूम हो गया कि पैर के नीचे सांप है, फिर क्रांति। फिर आप आराम से उठोगे कि एकदम
एकदम
आपके घुटने में दर्द है, पैर भी नहीं उठते हैं। लेकिन पता नहीं उस समय कहां से ताकत आ जाती है और आदमी फिर भागना शुरू कर देता है, भागना शुरू कर देता है। ये क्रांति, ज्ञान क्रांति मिले, ज्ञान ले जाता है परिवर्तन में, ज्ञान ले जाता है बदलाव में। ज्ञानेश्वरी गीता में एक बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया है। आप भोजन कर रहे हैं, बहुत भूखे हैं, और एक ग्रास उठा के जैसे आप खाना शुरू कर रहे थे, और उसी समय आपको मालूम पड़ा कि इसके अंदर जहर मिला हुआ है। उसके बाद फिर आप छोड़ देंगे उसको, आप नहीं खा सकते। सामने वाला कितना भी बोले कि नहीं भैया खा लो, आप नहीं मानोगे। ये परिवर्तन है, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। इसलिए एक जानना ही केवल पर्याप्त है, यहां कुछ करने की चीज नहीं है ये। और एक बार आप जान ले कि मैं धर्म से परे हूं, अधर्म से परे हूं, प्रवृत्ति से परे हूं और निवृत्ति से भी परे हूं, यहां न आना है न यहां जाना है, और फिर वैसे होना शुरू हो जाते हैं। ज्ञान के साथ हम होना शुरू हो जाते हैं। जहां पर इंद्रियों की प्रवृत्ति नहीं है, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानी मनसा सह, और उस आत्म तत्व को आप नहीं जान सकते हैं इंद्रियों से। पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं, उसको हम आंख से देख नहीं सकते, हम जीवा से चख नहीं सकते, क्योंकि वो रसमय नहीं है। वो आत्म तत्व को खट्टा मिठ्ठा है क्या? यदि वो खट्टा मीठा होता ना तो हम चख लेते, कोई शब्द होता तो कान से सुन लेते, कोई रूप होता तो आंख से देख लेते, कोई स्पर्श होता तो त्वचा से छू लेते, और वो खाने की कोई चीज होती तो
खा भी लेते,
हम थाली में रख के उसको खा भी लेते। लेकिन उससे परे चीज है वो, वहां पर क्रिया साध्यता नहीं है, क्योंकि इंद्रियों से जो चीज जानी जाती है वो क्रियालब्ध होती है, और जो क्रियालब्ध होती है ना वो चीज परिचिन्न होती है, दूर होती है। और जो अपनी आत्मा है ना, अपनी आत्मा हम हैं, तो हम हैं ये आंख से थोड़ी मालूम पड़ता है। यदि आंख से मालूम पड़े हम हैं और किसी के पास आंख ना हो तो फिर गया। जैसे आंख चली गई, अंधा आदमी हो गया तो उसको मालूम नहीं पड़ेगा मैं हूं। कान के बिना भी मालूम पड़ता है ना कि मैं हूं, इसलिए कान की गति वहां नहीं है। अपने होने में कान प्रमाण नहीं है, हाँ, अपनी कान अपने होने में प्रमाण नहीं है। ये खट्टा है कि मीठा है ये जानने के लिए रसनेन्द्रिय चाहिए, जीवा चाहिए। लेकिन आप अपने रसनेन्द्रिय से अपने को जान सकते हैं क्या? अपने को सूंघ सकते हैं? अपने आप को नहीं सूंघ सकते। इसलिए अपने होने में हमारी इंद्रियां प्रमाण नहीं है, हम अपने इन पांचों इंद्रियों से अपने आप को नहीं जान सकते, नहीं जान सकते। इसलिए पांचों ज्ञानेन्द्रियां जिस तत्व के बोध में समर्थ नहीं है, हम हैं। लेकिन आंख ये आपको मालूम कहां से पड़ता है? आंख से वो आंख वाला नहीं दिखाई देता है, लेकिन उस आंख वाले से आंख मालूम पड़ती है। आंख का होना भी अपने को मालूम पड़ता है और आंख का नहीं होना भी मालूम पड़ता है। वही तो आत्मा है। मेरे से तो मालूम पड़ता है कि मेरे पास आंख है, और नहीं है ये भी कहां से मालूम पड़ता है? आप ही तो बोलते हैं आंखें कम दिखाई दे रही हैं, आंखें अब कम देखने लगी हैं, और आप ये भी बोल रहे हैं धीरे धीरे आंखें तो मेरी खत्म हो रही हैं। तो आंखों का होना, उसका नहीं होना, उसका कम होना, इन तीनों का दृष्टा कौन है? वो है आत्मा है। आपकी कान, दोनों कान और उसका होना, उसका कम होना, उन दोनों का दृष्टा है। पहले तो बहुत दौड़ लगाते थे, अभी घुटने में थोड़ा दर्द होने लगा है। अब आप धीरे धीरे उठने लगे, धीरे धीरे चलने लगे, तो ये कौन जान रहा है? अच्छा, अब आप जवान थे, अब बूढ़े हो रहे, ये कौन जान रहा है?
मैं।
आप जवानी से उसको नहीं जानते हैं, उससे जवानी जान लेते हैं। ये अवस्थाओं को जानने वाला वो आत्मा है, अवस्था मैं आत्मा नहीं है। यदि अवस्थाएं होती तो इंद्रियों के द्वारा वो जाना जाता, वो अवस्थाओं से परे हैं। मैं बच्चा था, मैं जवान हो गया, मैं बूढ़ा हो रहा हूं, ये तीनों चीजें जो है ना हम जान लेते हैं। और हम ये भी जान लेते हैं कि एक चीज मिटी और दूसरी पैदा हो गई। पदार्थों का उदय और अस्त भी तो हम जान लेते हैं। पदार्थों के उदय और अस्त के हम दृष्टा है। मालूम पड़ा ना, ओहो ये शरीर तो बड़ा दुबला हो गया, दुबलेपन के साक्षी हो गए। और थोड़े दिनों के बाद थोड़ा मोटापा आ गया तो आप मोटापे के साक्षी हो गए। दोनों के साक्षी हैं, इस शरीर के उदय और इसके अस्त के दृष्टा है आप। और उस दृष्टा में इंद्रियों की प्रवृत्ति नहीं है, उन इंद्रियों की पहुंच नहीं है। इसीलिए श्रुति ने कहा कि वो परम पद आत्म तत्व इन पांचों ज्ञानेन्द्रियों से परे हैं। अच्छा, तो फिर मन के द्वारा तो जान लेंगे उसको, मन के द्वारा तो उसको जान लेंगे? बोले नहीं, यन न मनसा मनुते। मन भी तो संकल्प विकल्प विकल्पात्मक होता है, संकल्प और विकल्प ही मन है। संकल्प माने ये मैं ऐसा करूंगा नहीं करूंगा, ये दोनों होते हैं। ये मन जो है ना बहुत मजेदार है, कभी बोलता है करो और कभी बोलता है
नहीं करो।
ये जो करो और नहीं करो, जो अव्यवस्थित जो अंतःकरण की वृत्ति है, जो चेतना है वही मन है, और ये मन भी तो आप जान लेते हो ना। आप बोल देते हैं कि मेरा मन, ऐसा बोलते हैं कि नहीं, मेरा मन नहीं हो रहा है, और उसके बाद आपका मन होने भी लगता है। जब आपने बोला कि मेरा मन, तो इतने में आपको समझ लेना चाहिए कि वो आप नहीं है, वो आपका मन है। आप बोलते हो भैया ये बैग मेरी है, ऐसा बोला आपने। जब आपने मेरी बैग ऐसा बोला, तो इसका मतलब कि वो बैग आपसे अलग है, और खो जाए तो आपकी बैग खो गई तो आप खोते हैं कि बैग खोती है। भाई बहुत कीमती बैग थी, नई नई थी, उसके अंदर बहुत सारा पैसा भी था, और वो बैग खो गई। तो खो गई तो आप खोए कि बैग खोई? वो बैग खो गई ना, तो आप बोल देते हैं भैया वो मेरी बैग थी, खो गई। इसका मतलब आप नहीं है, वो आप नहीं है। तो ऐसे ही शरीर का तत्व दृष्टि से बैग से ज्यादा मूल्य नहीं है, उस बैग से ज्यादा इसका मूल्य नहीं है। ये जो बैग है ना, शरीर रूपी बैग, इसके अंदर हम बैठ के मजेदार यात्रा करते रहते हैं, और जब ये खो जाता है तो हम नहीं खोते हैं
शरीर को।
हाँ, ये शरीर छूटेगा ऐसा बोलते हैं ना, ओहो ये शरीर छूटेगा, ये तो अपरिहार्य है, और ये छूटने और मिलने से परे हम हैं, जन्म और मृत्यु से परे हम हैं। हम इसको भी जानने वाले, छूटने और पकड़ने, इन दोनों से परे हम हैं। मन को भी हम जान लेते हैं, क्योंकि मन से अलग है, और मन के द्वारा भी उसको जाना नहीं जाता है। मन को जानने वाला वो है, मन उसको नहीं जान सकता है। और बुद्धि च न विचेष्टति, वहां बुद्धि भी चेष्टा नहीं करती है। चेष्टा है ना, बहुत सारी चेष्टाएं, आंख की चेष्टा है रूप दर्शन में, कान की चेष्टा है शब्द दर्शन में, रसनेन्द्रीय की चेष्टा है रस दर्शन में, घ्रानेन्द्रीय की चेष्टा है गंध दर्शन में, दुर्गंध दर्शन में, स्पर्श दर्शन में आपकी त्वचेन्द्रीय की चेष्टा है। ये पांचों इंद्रियों और मन की भी चेष्टा है, बुद्धि की भी चेष्टा है, दुनिया के पदार्थों के विश्लेषण में आपकी बुद्धि चेष्टा करती है। चेष्टा करती कि नहीं, अच्छे बुरे का निर्णय कर लेते, निर्णयात्मक जो अंतकरण की वृत्ति है वही बुद्धि कहलाती है। आप जब निश्चय कर लेते हैं ना, ओहो ये ऐसा ही है, तो वो बुद्धि कही जाती है। और ये निश्चयात्मक मनोवृत्ति के द्वारा भी बाहर के पदार्थों को जाना जा सकता है, आत्म तत्व को नहीं। बुद्धिश्च न चेष्टति विचेष्टति तामाहुहु परमां गतिम। अरे बोले वही तो परम गति है, माने जहां इंद्रियां मन और बुद्धि पहुंच नहीं सकती, वही परम गति आत्म तत्व है, वही मोक्ष है। बोलते हैं ना, जहां चंद्रमा की पहुंच नहीं है, न सूर्य की न अग्नि की, बाहर के किसी भी संसार के पदार्थों की वहां पहुंच नहीं है, तो वही परम गति है। अच्छा भाई, परम गति वो आपके अनुभूति के अंदर की चीज होगी कि उसके परे की होगी? भाई आत्मा संसार के अंदर की चीज होती, वो यदि संसार का ही हिस्सा होती तो वो परम नहीं होती। होती आपका मोक्ष संसार का एक हिस्सा हो तो एक चीज होगी फिर। जैसे आप मुंबई में आ गए, तो आम आदमी के लिए तो मुंबई तो मोक्ष ही है। मोक्ष आम आदमी के लिए तो मुंबई मोक्ष ही है। ओ भैया मुंबई चलो, अरे बहुत बढ़िया मुंबई। जब मुंबई की बात बोलते हैं हम लोगों को, महात्मा पूछते हैं कि कहां जाते हैं, मुंबई जाते हैं, तो उनको ऐसा लगता है मुंबई गए मतलब बहुत बड़े हैं स्वामी जी, स्वामी जी बहुत बड़े हैं। क्यों मुंबई, और मुंबई में भी प्रेमपुरी बोलते हैं, ओहो तब तो इससे बड़ा कोई साधु है ही नहीं है। पर हमको जोधपुर एक सत्संग मंडल है, उसका मैं अध्यक्ष हूं, भागवतानंद जी महाराज जी उसके अध्यक्ष थे। तो उन्होंने फिर हमको बोला कि भाई इसको संभालो तुम। मैंने कहा आज्ञा। एक भगत ने पूछा, महाराज मुंबई में आप कहां रुकते हैं, कहां हैं? मैंने कहा प्रेमपुरी। ओ बोले प्रेमपुरी, तब तो आप बहुत बड़े साधु हैं। बोले प्रेमपुरी मुंबई में, और भी प्रेमपुरी? अरे बोले वो तो बहुत पॉश एरिया में, और वो बड़े बड़े लोग हैं। और फिर उन्होंने ये भी बोला कि दक्षिणा भी बहुत मिलती होगी। अरे बोले बड़े बड़े लोग हैं तो बड़े लोगों की बड़ी दक्षिणा। मैंने कहा हाँ भाई। तो आपका लक्ष्य मुंबई है, मुंबई है, और मुंबई को आप क्या समझ रहे हैं? ये सब दुखों का हरण करने वाला है, सब दारिद्र्य का हरण करने वाला है, सारी परेशानियां यहां आने के बाद खत्म हो गई। और बहुत कुछ खत्म भी होती है, नहीं होती है?
होती है बिल्कुल
भाई। आप यहां बैठे हैं तो एसी में बैठे हैं, आपको पसीना आता है? गर्मी ठंडी जाड़ा बरसात कुछ मालूम पड़ता है? नहीं। मच्छर है भाई? आप अन्यत्र कहीं गांव में बैठ कर कथा श्रवण कर रहे होते तो आपको मच्छर खा रहे होते? आपके पैरों में तकलीफ होती? हो यार मच्छर खोलते हैं। मच्छर से मुक्ति हो गई कि नहीं? परेशानी से मुक्ति हो गई। बहुत सारी चीजें यहां आपको अपेक्षित जो है मोक्ष है। आपकी बहुत सारी परेशानियां यहां आने से दूर हो गई हैं। ये एक संसार का हिस्सा है, ये मुंबई एक संसार का हिस्सा है। और यहां आपको बहुत अच्छी से अच्छी फैसिलिटी, बहुत अच्छी से अच्छी सुविधाएं मिली हुई हैं। ऐसा मोक्ष भी कई संसार का हिस्सा हो तो वो भी फिर संसार का हिस्सा होगा ना? और जो संसार का हिस्सा है वो कितना भी अच्छा हो वो संसार का हिस्सा होता है। ऐसे आपका जो है लोक लोकांतर स्वर्ग है, वो स्वर्ग संसार का हिस्सा है कि आत्मा परमात्मा का हिस्सा है? वो संसार का हिस्सा है। इसलिए क्षीणे पुण्य मर्त्यलोका विशन्ति। हम वो उन्होंने पूछा कि आप मुंबई में प्रेमपुरी में कितना दिन रुकेंगे? क्या वहीं रुकेंगे क्या प्रेमपुरी में? बोले हमने कहा नहीं नहीं, हम तो 31 तारीख तक। और जैसे 31 तारीख बस 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 सुबह का प्रवचन हुआ कि नहीं, और राम फिर पूछना शुरू कर देता है, महाराज ये कमरा कब खाली करोगे? चिमन भाई शुरू पूछना शुरू कर देंगे कि महाराज टिकट टिकट कब का है, निकालू क्या? भगाने का तरीका है ये। आप उनको ये मत बोलिए कि आप कब जा रहे हैं, ये भी मत बोलिए। आप उन्हें महाराज टिकट कब का है, और ये भी बोलिए कि टिकट नहीं हुआ तो बना दूं क्या? बना दूं? क्षीणे पुण्य मर्त्यलो का विजयंती। जब तक पुण्य है तब तक, आज ऐसे पुण्य खत्म, बस 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 वहां से विदा होना पड़ता है, क्योंकि ये संसार का हिस्सा है ना।